Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसके लिए भी हिम्मत की जरूरत है. आपको रस्सी में भ्रांति भी हिसाब की हो सकता है कि आप दरवाजा बंद करके अंदर ही रहे, बाहर ही न आए, टार्च लेके बाहर आएंगे. उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए. हाथ में डंडा लेंगे, टार्च लेंगे, अब ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद आपको मालूम पड़ा हो ये तो रस्सी. और जैसे आपको मालूम पड़ा वैसे आप बहुत प्रसन्न हो जाओ, हो खुश हो गया. पहले भय, भ्रांति भय को पैदा कर रही थी, भ्रांति पलायन को पैदा कर रही थी, भ्रांति विषाद को पैदा कर रही थी. और जैसे आपने प्रकाश जलाया, पूर्ण बोध हुआ, रस्सी का पूर्ण बोध हुआ, और जैसे पूर्ण बोध हुआ भ्रांति टूटी, और भ्रांति टूटने के साथ भ्रांति जन्य शोक, भ्रांति जन्य भय, भ्रांति जन्य दुख सारा समाप्त. और आप प्रसन्नता में चले गए, आप प्रसन्न हो गए. ये प्रसन्नता भी बोधजन्य है, ये प्रसन्नता ज्ञानजन्य है. और वो पहला भय, विषाद, दुख वो भ्रांतिजन्य था. इसलिए सामान्य बोध, अधिष्ठान का सामान्य बोध कुछ है, ये भ्रांति को पैदा कर देता है. और जो विशेष बोध हो गया, हो ये तो रस्सी है, अधिष्ठान का बोध हो गया, और अधिष्ठान के बोध के साथ ही आपकी भ्रांति टूट जाती है. अब आप दोनों में विचार करो, एक अधिष्ठान तत्व है, एक अधिष्ठान तत्व जिसके अज्ञान से भ्रांति पैदा होती है, जिसके ज्ञान से भ्रांति मिट जाती है, उसी को अधिष्ठान बोलते हैं. जिसके होने से कार्य हो और जिसके नहीं होने से कार्य न हो उसको कारण कहा जाता है. जिसके ज्ञान से, जिसके सामान्य ज्ञान से भ्रांति पैदा हो और जिसके विशेष ज्ञान से भ्रांति मिट जाए उसी को अधिष्ठान कहते हैं. तो आपकी जो रस्सी है ना, वो अधिष्ठान है. जिसके सामान्य ज्ञान से ये कुछ है, ये सामान्य ज्ञान से भ्रांति पैदा हो गई, और वो भ्रांति भी ऐसे पैदा नहीं होती है. केवल सामान्य ज्ञान से भ्रांति पैदा नहीं होती है, भ्रांति पैदा होने के लिए दृष्टा के अंदर, प्रमाता के अंदर भय का होना बहुत जरूरी है, या उसके अंदर प्रलोभन का होना बहुत जरूरी है. प्रलोभन भी भ्रांति पैदा कर देती है, और भय भी भ्रांति पैदा कर देता है. जैसे आपने रस्सी को देखा सामान्य रूप से, लेकिन आपके मन में भय नहीं, सर्प के प्रति भय ही नहीं है, तो आपको भ्रांति होगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है. भय ना हो तो भ्रांति का होना बहुत मुश्किल है. लेकिन आप बाजीगर हैं, आप सांप पकड़ने वाले हैं. अब सांप पकड़ने वाला आदमी होगा ना तो उसको भ्रम हो जाएगा, वो प्रलोभन है. वहां सांप पकड़ने वाला है, वो ढूंढ रहा है, सांप चाहिए उसको. और जैसे छोटी मोटी रस्सी उसने देखी, अंधेरा है छोटा मोटा, और वो देखते उसको भ्रांति हो जाएगा, वो सांप तो नहीं, प्रसन्न हो जाएगा. वो सांप को देखे भागेगा नहीं, वो प्रसन्न होगा. वो भय और प्रलोभन जब सामान्य ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं वो भ्रांति पैदा कर देते हैं. इसलिए वासना हमारी भ्रांति के प्रति कारण है. बाहर की परिस्थितियों के साथ हमारी वासना जब जुड़ जाती है तो भ्रांति पैदा होना शुरू हो जाती है. आप किसी व्यक्ति को देख लेते हैं और उस व्यक्ति के सामान्य बोध को जब आपके अंदर की दुर्भावनाएं जो जुड़ जाती हैं तो वह इस व्यक्ति में भ्रांतियां पैदा कर देती हैं. हम बहुत सारे अनुभव अपने जीवन में करते हैं, हमारे राग द्वेष जुड़ जाते हैं और वहां व्यक्तियों में भ्रांतियां पैदा कर देते हैं. ये अधिष्ठान है, भ्रांति अधिष्ठान मूलक होती है. यदि अधिष्ठान न हो तो भ्रांति का होना संभव नहीं है। यदि अधिष्ठान न हो तो भ्रांति पैदा होना ही संभव नहीं है। इसलिए भ्रांति को पैदा होने के लिए अधिष्ठान चाहिए। और यदि आपको भ्रांति हुई इसका मतलब वहां अधिष्ठान है। आपको सर्प दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वहां पर अधिष्ठान है, वहां रसी है, वहां कोई ना कोई चीज है। वहां कोई ना कोई चीज ना हो तो आपको दिखाई देना संभव ही नहीं है। आपको चांदी मालूम पड़ी, आप पहुंच गए गंगा के किनारे, बालू की रेत फैली हुई है और उस बालू की रेत में आपको भ्रांति हो गई, चांदी की भ्रांति हो गई। आप वहां जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। कई बार गिरीश जी आपको आपने देखा होगा इतना सा बालू का कण होता, इतना सा बालू का कण और वो ऐसा चमकता है जैसे इतना हो। आप वहां जाके ढूंढोगे तो वो इतना सा कण है, वो छोटी सी कोई कणिका होगी और वो कणिका दूर से प्रकाश की किरणों के माध्यम से वो ऐसी मालूम पड़ती है। जरूर है, वो अधिष्ठान है। बिना अधिष्ठान भ्रांति का होना संभव नहीं है। एक अधिष्ठान है और दूसरा अध्यस्त रस्सी अधिष्ठान हो गई और उस रस्सी में जो प्रतीयमान सर्प है वो भ्रांति है, वो अध्यस्त है, वो भ्रम है। और इन दोनों की सत्ताओं का आप विचार करते हैं तो अधिष्ठान की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। अधिष्ठान की सत्ता यहां पर रस्सी की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है, क्योंकि आपने जब प्रकाश लाया और देखा तो आपको मालूम पड़ा हो ये तो रस्सी है, तो आप उसको हाथ में ले सकते कि नहीं? ले सकते हैं। आपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद आपको मालूम पड़ा ये तो रस्सी है, और वो ये भी मालूम पड़ेगी कितनी मोटी है, कितनी लंबी है, सब कुछ मालूम पड़ा, उसका आप उपयोग भी कर लेंगे। उसकी सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। और जो सर्प है ना, सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है। और प्रातिभाषिक सत्ता का अर्थ होता है केवल प्रतीति मात्र सत्ता। देखो इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं, इसी को मिथ्यात्व, जो प्रतीति मात्र है उसका जो होना है वो अस्तित्वगत नहीं है, उसका होना केवल दृष्टिगत है। सर्प का होना अस्तित्वगत धर्म नहीं है, रस्सी अस्तित्वगत है। और आप रस्सी को उठा भी लेंगे, दूसरे को दिखा भी देंगे, जो अस्तित्वगत वस्तु होती है वो अनेकों दृष्टि का विषय होती है। और जो केवल प्रतीतिगत वस्तु होती है, प्रतीति मात्र वस्तु होती है, प्रातिभाषिक सत्ता मात्र वस्तु होती है, वो केवल दृष्टा के दृष्टि का विषय होती है, वो दूसरे दृष्टा के दृष्टि का विषय नहीं होती है। इन दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। वहां रस्सी पड़ी है तो वो रस्सी आपको भी मालूम पड़ेगी और मेरे को भी मालूम पड़ेगी। हजारों लोग वहां ले आए तो भी हजारों लोग उसको देखेंगे और वो अनुभव करेंगे तो रस्सी है। वहां कोई ये नहीं बोलेगा ये सांप है, बोलेगा नहीं बोलेगा। वो हजारों लोगों की दृष्टि का विषय, वो व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन वो जो सर्प है वो कितने लोगों की दृष्टि का विषय होगा? बस बस जो दृष्टा है ना उसी के दृष्टि का विषय होगा। हो सकता है एक साथ दो लोगों को भ्रम हो जाए, हो सकता है एक साथ सौ लोगों को भ्रम हो सकता है। सौ लोग ग्रुप में जा रहे थे और अंधेरे में रास्ते में रस्सी पड़ी थी और सब लोगों को ओ वो तो साफ भागे, सौ लोग भागे। लेकिन जब आप प्रकाश ले आएंगे और भी लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वो सांप उनके दृष्टि का विषय होगा कि नहीं? अब वहां उसके दृष्टि का विषय नहीं होगा क्योंकि प्रकाश ले आए, देख लिया, मालूम पड़ा। अब वो सांप जो है ना केवल भ्रम वाले व्यक्ति के दृष्टि का विषय बना, जिसको भ्रम नहीं है उसके दृष्टि का विषय वो नहीं बना, माने केवल वो दृष्टि का विषय है। वो उसका दृष्टि का विषय होना ही उसका अस्तित्व है। वो दिखाई दिया उतना ही उसका अस्तित्व। आप सो रहे थे, चलो आपको हम स्वप्न में ले जाते हैं, आप सो रहे थे और सोते समय आपको बहुत डर लग गया, लगता है कि नहीं? हाँ हाँ, सोते समय आदमी को, बहुत बड़े बड़े आदमी को भी डर लगता है, जो बहुत बहादुर भी होता है उसको भी सपने में डर लगता है। एक बार हम लोग पंजाब में थे, वो 84 के आसपास की बात है, बहुत बड़ा आतंकवाद खड़ा था उस समय, वहां 87 ऐसा कुछ समय था, वो पंजाब में बहुत बड़ा आतंकवाद था, वो कोई वहां जाना पसंद नहीं करते थे लोग, वहां बसों से ट्रेनों से उतारकर 50-50 लोगों को मार दिया था आतंकवादी। एक गंगा नंद जी महाराज नाम के महात्मा थे और हम सफेद कपड़े में थे, बनारस में पढ़ते थे, हमने कहा चलो पंजाब। तो महात्माओं ने कहा अरे पंजाब में क्या करने के लिए जाओगे, मरने के लिए, वहां तो आतंकवाद। हमने कहा चलो क्या है साधु महात्मा, अरे बोले वहां हिंदू रहते ही हैं और वो आतंकवादी सबको थोड़ी मारते हैं, हम तो साधु महात्मा, चलो चलो। और हम संगरूर जिले में, एक कोई मेलाराम भगत था, अपने हिंदू धर्म में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सदगृहस्थों में बड़े बड़े सुंदर लोग। कल हमारे गिरी जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत अच्छा आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छी बातें बोली, सबको अच्छा लगा। और बहुत धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे समाज में हैं। मेलाराम भगत तूने वहां कुटिया बना रखी थी गांव के बाहर, और उस कुटिया में सारी व्यवस्थाएं थी, रहने खाने पीने भोज सब कुछ था उसमें। जब हम लोग गए, कोई तो महात्मा तो रहता, एक महात्मा अखंडानंद जी महाराज जी के शिष्य थे, बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो रहते थे, नाम था अभयानंद सरस्वती जी महाराज, वो मोटा ताजा शरीर, शायद वो हरियाणा का शरीर रहा होगा, वो उसमें रहते थे कुटिया में, सुरक्षित कुटिया थी वो। और बाकी एक हॉल था, उस हॉल में आसन लगाना पड़ता था, हम लोग दोनों गए आसन लगाए, और वे बोले तुम कैसे आए भाई, यहां तो कोई आता ही नहीं, आ जाता है बोले रात में भाग जाता है, तुम कैसे आए ब्रह्मचारी, बड़े खुश हो गए वो। उस समय मैं अखंडानंद आश्रम से नहीं जुड़ा था, मैं बनारस में रहता था, बड़े प्रसन्न हुए, बातचीत होती रही, वहां के आतंकवाद ये वो सारी। और मैंने कहा आप क्या कहा, अरे बोले मैं बहुत बहादुर हूं, बोले मैं तो बोले कितने भी आतंकवादी आए तो गोली झेल लूंगा मैं, बहुत मैं हम भी खुश हो गए। मैंने कहा बड़ा बहादुर आदमी तभी यहां रह रहे हैं, लेकिन जैसे रात हो जाती ना तो फिर हमारी हालत खराब हो जाती थी। अब हॉल में दरवाजा भी नहीं था और छोटी छोटी दीवारें, हमको डर लगता था, रात में नींद ही ना आए, थोड़ा सा चूहा भी खुश हो जाए तो वो जग जाते थे, बैठ जाते थे, सांस रुकने लगती थी हम लोगों की, महीनों रहे। हमने कहा चलो रहना है तो रहना है। एक दिन अचानक आंख खुली और बहुत भयंकर आवाजें आ रही, भयंकर आवाजें, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो कोई किसी की छाती पर बैठ के काट रहा हो, ऐसी दर्दनाक आवाजें। हम घबरा गए, मैंने स्वामी जी को जगाया, गंगानंद जी को, मैंने कहा जगिए जगिए, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, चलो भागो यहां से, लगता है कि कुछ है, स्वामी जी को मार रहे हैं कोई लोग मार रहे हैं स्वामी जी को। फिर भी मैं हिम्मत किया, मैंने सोचा कि ऐसे भागना उचित नहीं है। अंधेरे में, थोड़ा सा अंधेरे से होते हुए स्वामी जी के कमरे की तरफ तो जाके देख तो रहे, भागना तो उचित नहीं है। फिर थोड़ा अंधेरे से होते 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 मैं स्वामी जी के कमरे के पीछे चला गया अंधेरे में, और पीछे जाकर के धीरे से मैंने खिड़की से देखा तो स्वामी जी सो रहे थे, और सोते समय भयंकर रो रहे थे, वो भयंकर रो रहे थे, जैसा कि मानो कोई काट रहा हो ऐसे। एक बार तो मेरे को भी लगा अरे ये तो भयंकर रो रहे हैं और दरवाजा बंद है, ये स्वप्न देख रहे हैं। फिर मैंने जगा दिया, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, ओ बोले नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। मैंने कहा ठीक है सब कुछ ठीक है, अरे बोले ठीक है ब्रह्मचारी ठीक है, बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने चाय पिए, हम उसके बाद मैंने पूछा स्वामी जी रात में क्या हुआ था, अरे बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि रात में कोई आतंकवादी वगैरह आए थे क्या, अरे बोले क्या हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं बोले आतंकवादी, अरे बोले हम तो बंदूक छीन लेंगे गोली छीन लेंगे। मैंने कहा झूठ मत बोलिए, रात में आपने स्वप्न में क्या देखा, अरे बोले ब्रह्मचारी बोले हमको बदनाम मत करो बोले। मैंने कहा फिर भी आप बताओ, बदनाम नहीं करेंगे दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे, फिर भी बताइए। अरे बोले स्वप्न में आतंकवादी मेरे छाती पर आके बैठे थे और वो हमको छुरे से काट रहे थे, और ये बोले इतने भयभीत हो गए, बोले बहुत रोया, बोले बहुत रोया, ऐसा लगा मार डालेंगे, और आपने आके जगा दिया हमको, बचा दिया। बोले आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन बहुत बार स्वप्न में हम बड़ी विचित्र सी चीजें देखते हैं। अनेकों जन्मों के संस्कार हैं, और उन संस्कारों में आप अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। और महात्मा ने क्या देखा, मेरे को काट रहे हैं, और जैसे मैंने जगा दिया तो उनका काटना बंद हो गया, हमने बचा दिया, नहीं तो कट जाते। महात्मा जी ने बोला कि आपने मेरे को बचा लिया, और नहीं बचाता आज यदि नहीं बचाता तो आप स्वप्न में थे ना, स्वप्न में थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे को काट डालेगा। और सचमुच काट डालता हूं स्वप्न में, यदि मैं नहीं जाता तो स्वप्न का जो अगला जो एपिसोड था वो कटने का ही था ना वो। और मान लो काट भी डाले गए होते स्वप्न में, और उसके बाद वो अपने आप जग जाते तो वो क्या फील करते, वो क्या अनुभव करते कि मैं कटा हूं। अरे यदि सचमुच कटे होते तो जगते ही नहीं। यदि वो सचमुच कट गए होते स्वप्न में तो वो जगते ही नहीं, और उनका जगना ही सिद्ध करता है कि वो स्वप्न था, वो जग गए और वो अनुभव कर रहे थे कि मैं बच गया, ये बच गया, ये सिद्ध करता है कि वो स्वप्न था, वो देख रहे थे वो स्वप्न की चीजें थी। ये दो सत्ताएं हो गई, यहां दो सत्ताएं हो गई, एक प्रातिभाषिक सत्ता, वो जब देख रहे थे कि मेरे को कोई मार रहा है, अच्छा उनको सचमुच कोई मार रहा था कि वो केवल अनुभव कर रहे थे, मार रहा था, वहां केवल अनुभव कर रहे थे, वहां मारने की क्रिया नहीं थी, केवल अनुभव कर रहे थे, वहां केवल मालूम पड़ रहा था, मालूम होना ही स्वप्न है, स्वप्न और कुछ नहीं, मालूम होने का ही नाम स्वप्न है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि दृष्टा के दृष्टि के अलावा भ्रांति के पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, दृष्टि मात्र अस्तित्व होता है, वहां दृष्टि मात्र सत्ता है। और इसी को बोला गया शास्त्र ने दृष्टि सृष्टिवाद। आप सुनते होंगे इस शब्द को कभी, दृष्टि सृष्टिवाद, माने दृष्टि ही सृष्टि है, वहां दृष्टि के अलावा कोई सृष्टि नहीं है, वहां देखने के अलावा कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में आप केवल देख रहे थे, वहां देख रहे थे इतना ही स्वप्न के पदार्थों का अस्तित्व था, उसके अलावा स्वप्न के पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं था। ये प्रातिभाषिक सत्ता, ये सर्प पदार्थ जो रज्जु में सर्प दिखाई देता है उसकी सत्ता जो है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, प्रतिति मात्र सत्तात्व, प्रातिभाषिकत्व, ये प्रातिभाषिक सत्ता का लक्षण है, प्रतीति मात्र सत्ताकत्व, केवल प्रतीति मात्र जिसकी सत्ता हो वही प्रातिभाषिक है। इसलिए शुक्ति में जो रजत है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, रज्जु में जो सर्प है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, स्वप्न पदार्थ प्रातिभाषिक सत्ता है, और वो जो रस्सी है ना उसकी सत्ता व्यावहारिक सत्ता, शुक्ति की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है, आपके मन की सत्ता जिस मन को अधिष्ठान बनाकर आधार बनाकर इतना लंबा चौड़ा स्वप्न आपने देखा, उस मन की सत्ता क्या है, मन की सत्ता व्यावहारिक है। इसलिए अधिष्ठान का विवर्त का अर्थ ये है, विवर्त का अर्थ ये है जहां पर विपरीत सत्ता, विभिन्न सत्ता हो और अन्यथा रूप हो उसको विवर्त बोलते हैं, समान सत्ता और अन्यथा रूप परिणाम, विपरीत सत्ता और अन्यथा रूप विवर्त। समझ गए दो, रज्जु में सर्प दिखाई दिया, रज्जु की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है और सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता, तो इसलिए विपरीत सत्ता तत्व आ गई, ये दोनों में विपरीत सत्ताएं हुई। और अन्यथा रूप है, जो रज्जू का रूप है वो सांप का रूप नहीं है, सर्प का रूप अलग है और आपके रस्सी का रूप अलग है, इसलिए विपरीत सत्ता और जहां विपरीत स्वभाव हो, विपरीत स्वरूप हो, विपरीत गुणधर्म हो, उसको विवर्त बोलते हैं। और जहां समान सत्ता हो और विपरीत स्वभाव गुण हो, उसको परिणाम बोलते हैं। जैसे दूध और दही, मिट्टी और घड़ा, ये दूध का जो दूध की सत्ता व्यवहारिक है और दही की भी सत्ता व्यवहारिक है। इसलिए आप जब बोलते हो ना, ये नहीं बोलते कि दूध में दही अध्यस्त हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मिट्टी में घड़ा अध्यस्त हैं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन आप ये बोल सकते कि नहीं, रज्जू में सर्प अध्यस्त हैं। ये दो चीजें हैं, ये विवर्त। इसलिए रज्जू का सर्प विवर्त है और दूध का दही परिणाम है, मिट्टी का घड़ा परिणाम है और सूक्ति का रजत विवर्त है। और जो ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया परमात्मा का विवर्त है और अविद्या का परिणाम है। यहां पर यही तो बात कह रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं है, हम तो ऐसा ही देख रहे हैं। रज्जू में सांप देख रहे हैं, है ना? तो रज्जू में सांप देख रहे हैं, तो देखने ये देख रहे वो सत्य हैं कि असत्य हैं? जो दृष्टि है हमारी वो असत्य हैं। लेकिन असत्य बुद्धि कब मालूम पड़ती है? जब अधिष्ठान का बोध होता है। अच्छा, स्वप्न, आपको स्वप्न कब मालूम पड़ता है? स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न मालूम पड़ता है कि जागृति में आने के बाद मालूम पड़ता है? जागृति में आने के बाद मालूम पड़ता है। ओहो, जग गए तब मालूम पड़ेगा, ओहो ये तो स्वप्न है। तो यहां पर यही बात बोल रहे, ऊर्ध्व मूल मद शाख, ये ऊर्ध्वम, ये जो ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम अधिष्ठानम, अधिष्ठान तत्व ब्रह्म तत्व, ये संसार का अधिष्ठान तत्व जो है ब्रह्म है और उस ब्रह्म का विवर्त है। ये सारी जो दुनिया है उस परमात्मा का विवर्त है, विवर्त है। विवर्त माने जैसा दिखाई दे रहा वैसा नहीं है, जो दिखाई दे रहा है ये भ्रांति रूप है और उसका मूल जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है। शेष विषय हम कल करेंगे, बड़ा सुंदर विषय है। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय।
ओम ह्रीं नमः शिवाय।
ओम ह्रीं नमः शिवाय।
शिवाय।
ओम
शिवाय
ॐ ह्रीं नमः 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 शिवाय शिवाय
ॐ ह्रीं नमः 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 शिवाय
शिवाय ॐ ह्रीं नमः शिवाय